समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
Namaskar and hello, Akarshita. Akarshita, we are still in pain, isn't it? The sound of heavy gunfire pierced the pristine air in the Kashmir Valley's Baisaran Meadow on the 22nd of April, shattering the tentative peace and calm that had enveloped the insurgency-torn region since last few years. We stand in solidarity with the victims and the families of the dastardly terror attack. The mini Switzerland, as it was called, has been turned into a valley of tears. This terror attack has drawn global support from several countries uniting to fight against terrorism. While our Prime Minister roared, India is going to identify, track and punish terrorists and the perpetrators of this heinous crime till the end of earth. Life moves on, but certainly with a lot of pain and anguish in our hearts. And here we are with a fresh new episode of the afternoon news magazine. So let's go with the headlines first. Army Chief General Upendra Dwivedi visits Srinagar, reviews security situation in the wake of Pahalgam terror attack.
Pakistani Sena ne niyantran rekha par kai sthanon par sanghash viram ka ullanghan kiya. Bhatiya Sena ne uchit jawabi karwai ki.
French President Emmanuel Macron calls Prime Minister Narendra Modi, says France stands firmly with India.
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पर हाल ही में हुए रूसी मिसाइल हमलों पर असंतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हमले रोकने को कहा।
IMD issues heat wave alert in northwest India for the next 4 days.
और IPL क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा।
And now it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about World Malaria Day and also about World Penguin Day. Today is World Malaria Day, which is observed every year on the 25th of April. It was established by the World Health Organization, or WHO, in 2007 to raise awareness about malaria. This year, the theme is Malaria Ends With Us. Reinvest, reimagine, reignite.
आज विश्व मलेरिया दिवस है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसका समय रहते इलाज नहीं किया गया तो जानलेवा साबित हो सकती है। मलेरिया प्लास्मोडियम नामक परजीवी से होता है। ये संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर खून चूसते समय परजीवी शरीर में छोड़ देता है। ये परजीवी लीवर और खून की कोशिकाओं को संक्रमित करता है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों की जान लेती है। 2022 में मलेरिया के लगभग 25 करोड़ नए मामले दर्ज किए गए और 6 लाख से ज्यादा मौतें हुई। इनमें से 94% मामले अफ्रीकी देशों से थे, लेकिन भारत और दक्षिण एशिया के कई हिस्से भी इससे प्रभावित हैं। खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में ये बीमारी अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
Yes, Akarshita, according to WHO, 263 million new cases of malaria were reported globally in 2023-24. 5,97,000 people died due to the disease. 95% of all cases occurred in the WHO African region.
दशकों की प्रगति के बावजूद मलेरिया अब भी हर मिनट एक व्यक्ति की जान लेता है, जिसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच के कारण नियंत्रण उपायों में व्यवधान है।
Of course, malaria disease happens to be a public health problem, and India has taken remarkable steps in reducing the burden. In 2023, India reported zero malaria cases in around 122 districts. India has improved from being a high burden to a high impact group of WHO in 2024. And by 2030, India expects to eliminate malaria with strengthened surveillance, targeted intervention and community involvement. The malaria eradication program in India includes intensified vector control, surveillance, public education and rapid access to treatment.
अगर हम बीमारी के लक्षणों की बात करें तो एक बार मानव शरीर के अंदर जाने के बाद परजीवी यकृत में गुणा करते हैं और फिर लाल रक्त कोशिकाओं में, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, संक्रमित करते हैं, जिससे बुखार, ठंड लगना, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। गंभीर मामलों में मलेरिया से अंग विफलता और कोमा और मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए श्रोताओं, अगर आपको भी ऐसी कोई भी लक्षण दिखाई देता है, हाई फीवर दिखाई देता है, तो जरूर डॉक्टर से संपर्क करें।
Of course, it's a deadly disease, but if diagnosed early, it is a must to prevent it, to go to the doctor, and of course, to avoid severe complications. We are here sharing a few ways to protect yourself from this disease, like you can use insecticide-treated mosquito nets while sleeping. Of course, apply mosquito repellents with 20 to 35% of DEET, which is a chemical and insect repellent sort of chemical on exposed skin, and also eliminate stagnant water to destroy mosquito breeding sites.
जी, और अगर हम और बात करें कि हम किस तरीके से इस बीमारी को रोक सकते हैं, तो हम मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि रात के समय ये जो इनकी संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और जैसा कि अभी अनुजा ने बताया भी कि मच्छर भगाने वाले बहुत ढेर सारे ऐसे क्रीम और स्प्रे आते हैं जिसको हम लगा सकते हैं, और आप जो है पूरे कपड़े पहन सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपको हो सकता है कि मच्छर जो ज्यादा संख्या में काटते हैं, तो उससे आप बच सकते हैं। और घर के आसपास सबसे बड़ी बात, पानी जमा ना होने दें। अक्सर हम कूलर, टंकियों और अनकंटेनरों में पानी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और उसके बाद कई दिनों बाद हमें पता चलता है कि उससे जो है मलेरिया फैल गया। तो इससे कहीं भी, किसी भी जगह, चाहे वो बकेट हो, चाहे कूलर हो, कहीं भी पानी ना छोड़े, और खिड़कियों और दरवाजों पर जाल लगाएं, इससे मच्छर घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो आप इन सब तरीकों से बच सकते हैं।
Yes, so be alert and take care of it. And now we take you to Nagaland. The state is also observing World Malaria Day. A report from our Kohima correspondent.
A state-level program on World Malaria Day was held in Dimapur today. The event was marked by a strong message of renewed commitment and collective responsibility in the fight against malaria. Gracing the occasion, Nagaland's Minister for Health and Family Welfare, P. Paiwan Konyak, emphasized that the theme of the day is more than just a slogan. It is a call to action and a reminder that each of us plays a crucial role in the global fight against malaria.
The responsibility is not just with health departments or global agencies. It lies with every one of us, from community leaders to health workers, from policymakers to families in malaria endemic areas. Today we have the power to make malaria a disease of the past.
Highlighting the progress made by the state over the years, Mr. Konyak pointed out that malaria-related deaths have remained at zero since 2018, a significant achievement compared to the 75 deaths recorded in 2006. He attributed this progress to the relentless efforts and dedication of the healthcare workers across the state. Mr. Konyak also urged everyone to reignite their passions and collective will to finish what has been started. On the occasion, several individuals were facilitated for their outstanding contributions to malaria control efforts in the states. For Parikrama Asonyo, Akashvani News, Kohima.
So World Malaria Day 2025 reminds us that malaria is preventable, treatable and ultimately eliminable. As the world faces evolving challenges from climate change to healthcare disruptions, the urgency to act is greater than ever. And now we also discuss World Penguin Day, which is celebrated today every year. So these were the sounds of typical penguins. If you go to ever to Antarctica, you can hear this very clearly. The day raises awareness about penguin conservation and the importance of protecting these charismatic birds and their habitats.
जी हाँ, आज विश्व पेंगुइन दिवस है। इसका उद्देश्य पेंगुइन के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उनकी प्रजातियों और आवासों की रक्षा करना, और इस दिन पेंगुइन के संरक्षण के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है।
Penguins are among the most social of all birds. All species are colonial. Penguins may swim and feed in groups, but some may be solitary when diving for food.
प्रजनन के मौसम के दौरान पेंगुइन तट पर आते हैं और विशाल कॉलोनियों में घोंसला बनाते हैं, जिन्हें रुकेरीज कहा जाता है। कुछ रुकरीज में सैकड़ों हजारों पेंगुइन शामिल हैं और सैकड़ों वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए हैं.
Yes, five species of penguins are found in Antarctica, and it's no surprise that this massive frozen landmass has earned the nickname of the land of the penguins. These iconic flightless birds share their chilly southern home with a diverse web of life in the ocean, on the ice, and under a sky of stars and aurora australis.
अंटार्कटिका को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रयोगशालाओं में से एक माना जाता है. यही कारण है कि इतने सारे वैज्ञानिक ठंड का सामना करते हुए वहां काम कर रहे हैं. जलवायु परिवर्तन जैसे दबावों से पेंगुइन प्रभावित हो रहे हैं. जलवायु परिवर्तन अंटार्कटिका में रहने वाले पेंगुइन एम्परर पेंगुइन और एडली पेंगुइन के लिए एक बढ़ती चिंता का विषय है. ये प्रजातियां भोजन और प्रजनन के स्थानों तक पहुंच के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भर है. लेकिन आज हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के दौर में अनुजा जिस तरीके से जो बर्फ है वो पिघल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन प्रजातियों पे, पेंगुइन की इन प्रजातियों पे बहुत खतरा मंडरा रहा है जिसे हमें रोकना चाहिए. और अगर हम उनको सुरक्षित कर पाएंगे तभी हम अपने क्लाइमेट को भी, तभी हम अपने जलवायु को भी सुरक्षित कर पाएंगे.
ऑफकोर्स आकर्षिता, टू सेव देयर देम बाय गेटिंग एक्सटिंक्ट, लिमिटेड ग्लोबल वार्मिंग इज द most effective way to secure their future. Antarctica's land-based species have adapted to survive the coldest, windiest, highest, driest continent on Earth. And Antarctica provides priceless services to the planet and humankind. It helps regulate the global climate by driving atmospheric circulation and ocean currents and absorbing heat and carbon dioxide. Antarctica even drives weather patterns in Australia.
एम्परर पेंगुइन प्रजनन के लिए बर्फ पर निर्भर है और अंटार्कटिका की प्रजातियों में से ये सबसे असुरक्षित हैं. सबसे खराब स्थिति में सम्राट पेंगुइन के 2100 तक विलुप्त होने का खतरा है. तो हम देख रहे हैं कि इतनी मात्रा में जो पेंगुइन हैं वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में हैं. हमें कहीं ना कहीं उनको बचाने का हमारे ऊपर एक भार है कि हमें कहीं ना कहीं उन्हें सुरक्षित रखना होगा.
वेरी मच. एंड ऑफकोर्स ऑल्सो कमर्शियल फिशिंग इन द सदर्न ओशन रीजन कैन फोर्स मेनी पेंगुइन स्पीशीज टू कम्पीट फॉर द फिश दे ईट. द प्रैक्टिस कैन ऑल्सो लीड टू एक्सीडेंटल capture and drowning in fishing nets. Let's go to our correspondent who held a talk with a zoo biologist in Mumbai.
The Veer Mata Jizabai Bhosle Botanical Udyan and Zoo in Mumbai, run by the Brihan Mumbai Municipal Corporation and popularly known as Rani Chi Bag, houses India's first penguin exhibit. The journey that began 9 years ago with 8 penguins has now blossomed into a growing family. Let us hear more from zoo biologist Dr. Abhishek Satam.
We brought 8 penguins in 2016 from Coax Aquarium, South Korea. These are called Humboldt penguins. These penguins are found in the coastal areas of Chile and Peru. Previously, we brought 5 female and 3 males.
To mark the occasion of World Penguin Day, the Veer Mata Jizabai Bhosle Botanical Udyan and Zoo announced new additions to their penguin family today.
3 chicks were born in the month of March. So, Donald Daisy is one pair who has laid first time 2 eggs, and from both the eggs, 2 chicks born. So, right now the total number of penguin is 21, 10 female and 11 male. It's the biggest success for any Indian zoo because this is the only facility available in India where visitor can get to see the penguins.
As we celebrate World Penguin Day, the penguin family at Veer Mata Jizabai Bhosle Botanical Udyan and Zoo continues to grow and thrive, a significant milestone in penguin conservation. Ankita Apte for Parikrama from Mumbai.
Of course, it's time to express our love for the penguins by saving them and by securing their future. They are truly one of the cutest creatures on the planet and they need our support to save them.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
Yes, the issuance of sports certificates via DigiLocker initiative was launched today to provide digital certificates to athletes as a proof for winning or competing in national and international level tournaments. Our correspondent reports that the digital certificates will also serve as a guarantee for authenticity.
The sports certificates will be issued by different sports federation in the DigiLocker platform, which can be accessed by sportspersons anywhere, anytime. A nodal officer will be appointed to digitize records and verify them. Highlighting its scope, Sports Authority of India mentioned that the initiative will be expanded at state level in the next 6 months and at district level within an year. The initiative will improve record keeping and prevent athletes from missing out on employment and educational opportunities due to improper or missing certificates. Talking exclusively to Akashvani News, Tokyo Olympic silver medalist and renowned athlete Mirabai Chanu said this will aid countless athletes, especially the ones coming from remote areas.
जो यंग बच्चों होते हैं कैंप में आते हैं तो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हैं उनसे तो उनके पास नहीं हो पाती और फैमिली ज्यादा गांव से आते हैं तो मैक्सिमम टाइम से हम ले नहीं पाते डॉक्यूमेंट तो उन सब के लिए जो एक इधर लॉकर में डॉक्यूमेंट सेव करके रखेंगे तो जो समस्या होता है जो ट्रेनिंग छोड़ के इधर उधर भागना वो जरूर खत्म हो जाएगी.
The issuance of sports certificate is a key step for guiding the sports sector in India towards an athlete-centric direction and boost its chances for hosting the 2036 Olympic. Adarsh for Parikrama, Akashvani News, Delhi.
बागवानी करना किसे नहीं पसंद, पर क्या आपको पता है कि आप इससे व्यापार भी कर सकते हैं? जी हाँ, एक ऐसी ही खास खबर है हिमाचल प्रदेश में. हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार कृषि व बागवानी क्षेत्र को सुदृढ़ कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने पर बल दे रही है. इस वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार 2000 करोड़ रुपए खर्च करेगी.
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कृषि व बागवानी उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका विपणन करने के लिए बेहतरीन व्यवस्था विकसित की जा रही है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में पशुधन का महत्वपूर्ण योगदान है. इसी दृष्टिकोण के साथ दुग्ध क्षेत्र के विकास के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हिमगंगा योजना को प्रथम चरण में पायलट आधार पर हमीरपुर व कांगड़ा जिलों में शुरू किया गया है. मिल्कफेड द्वारा मंडी, कुल्लू व शिमला जिलों में 120 स्वचालित और 32 डिजिटल दूध संग्रहण इकाइयां स्थापित की गई हैं. राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के मकसद से गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 45 से बढ़ाकर 51 रुपए जबकि भैंस के दूध को 55 से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर किया गया है. इसके अलावा किसी किसान या सोसाइटी द्वारा 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित दुग्ध संग्रहण केंद्र पर दूध स्वयं ले जाने पर 2 रुपए प्रति लीटर की दर से परिवहन सब्सिडी देने का प्रावधान भी किया गया है. इसके अलावा राज्य सरकार ने मिल्कफेड में दूध खरीद के कार्य को पूरी तरह डिजिटल करने का निर्णय किया है. प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित हल्दी 90 रुपए, गेहूं 60 व मक्का 40 रुपए प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया है. राज्य सरकार ने इस वर्ष 1 लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने और प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को हिम परिवार रजिस्टर से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं राजकुमारी चंदेल.
And now from one corner to another, we take you to Karnataka, where the Male Mahadeshwar Hill or MM Hill, located in Chamrajnagar district of Karnataka, is known for the ancient and sacred temple of Sri Male Mahadeshwar, which is known to be an incarnation of Lord Shiva. It draws lakhs of pilgrims from Karnataka and Tamil Nadu. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has announced that the religiously significant MM Hills will be developed for the convenience of the devotees and tourists visiting the place.
The Karnataka State Cabinet met in MM Hills yesterday for a meeting to discuss and approve various projects for the development of Chamrajnagar district, which is a backward region. After the cabinet meeting, Chief Minister Siddaramaiah chaired a meeting of MM Hills Development Authority. He announced that it is decided in the Male Mahadeshwara Swami Kshetra Development Authority meeting to make Male Mahadeshwara Hills as alcohol-free zone. He stressed that alcohol should be banned atop the hills. He also added that necessary basic facilities will be provided near the Sri Male Mahadeshwara Temple. He emphasized on the need to keep the temple premises and MM Hills clean and maintain hygiene. The Chief Minister has pointed out that steps should be taken to ensure that Laddu Prasad given at the temple should be of good quality and sold at lower price. He also added that a proposal should be made to the authority to build a dining room that can accommodate 2,500 to 4,000 devotees at one time. To be named as Dasoha Bhavan, it will provide free food to the temple visitors. Siddaramaiah also directed the authority to provide pure drinking water. He also directed them to beautify the temple premises, provide suitable accommodation for the visitors along with toilets. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें फिलहाल अंक तालिका में सबसे नीचे हैं। दोनों ने अपने पहले 8 मैचों में से सिर्फ 2 मैचों में जीत हासिल की है। इससे पहले कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स को 11 रनों से हरा दिया था।
And if we talk about the news from the market, benchmark domestic indices gave up early gains, ending in the red for the second straight session today. However, positive global cues helped the indices recover some of the lost ground. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, finally ended up with a loss of 589 points or 0.7% to close at 79,213. The National Stock Exchange Nifty 50 fell 207 points or nearly 0.9% to settle at 24,039. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading down at 95,400 rupees per 10 grams, while silver was trading up at 97,980 rupees per kilogram when reports last came in. And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On 25th of April 1809, the Treaty of Amritsar was signed between the British East India Company and the legendary Sikh leader Maharaja Ranjit Singh.
Maharaja Ranjit Singh proclaimed himself Maharaja of the Punjab in 1801. By 1808, he had expanded his kingdom to an area bounded by Gujarat, Ludhiana and Multan. With Ranjit Singh's plans to extend his control over Malwa on the south side of the Satluj River, the chiefs in the area appealed to the British for protection.
At the same time, the British also wanted a defensive treaty to contain Punjab to the Satluj River. Thus, the pact was concluded between Charles T. Metcalf, representing the British East India Company, and Maharaja Ranjit Singh, and it settled Indo-Sikh relations for a generation.
We also remember tribal freedom fighter Sumari Munda, who was martyred on the 25th of April 1939. Sumari belonged to Gangpur state, now in Odisha. He joined the protest against the unlawful imposition of the levy on tribal people by the Gangpur state under the leadership of tribal leader Nirmal Munda.
He also joined around 3,000 people at Simco ground when Nirmal Munda went to meet the Rani of Gangpur state to discuss the matter of levy on the 25th of April 1939. However, the police started firing on the peaceful protest, and in the firing, Sumari Munda was killed along with many tribals. We salute the great martyrs.
We also remember martyr Chirai Naga, who was hanged for killing British officers at Mayang Khang, Manipur. On the 25th of April 1891, a column of Manipur troops under the leadership of Ashang Kutpolia came to Mayang Khang after executing 5 Britishers at Kangla. When the Manipuri troops reached Mayang Khang, they were informed by the villagers that 2 British officers of the telegraph department were staying in the Mayang Khang rest house. The Manipuris fired shots, killing O'Brien instantly.
However, W.B. Melvin escaped with his rifle under the cover of darkness. A big search was carried out in the nearby jungle, and Chirai Naga found W.B. Melvin beside a stream, and he killed him. Chirai Naga was later arrested, tried and hanged on the 13th of October 1891 by the British. We salute the great martyr.
We also remember martyr Sajid Ali Khan, who took part in the First War of Indian Independence in 1857. A resident of Moradabad, Uttar Pradesh, Khan directed the pro-independence activities in Moradabad and provided financial support for them. He was captured by the British during their reoccupation of the Moradabad region on the 25th of April 1858 and was executed by hanging on the 27th of April 1858.
और आइए अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज भारत के महानतम गायकों व संगीतज्ञों में से एक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की पुण्यतिथि है। दिल को छू जाने वाली आवाज के मालिक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ने नवेली शैली के जरिए ठुमरी को नई आब और ताब दी। उस्ताद ने अपने प्रयोग धर्मी संगीत की बदौलत ठुमरी को जानी पहचानी शैली की सीमाओं से बाहर निकाला। आइए सुनते हैं उनका ये ठुमरी गायन।
Long time he stayed away from singing in films despite requests and persuasion from well-known producers and music directors. Finally, after much coaxing, he was convinced by the film producer K. Asif to sing two songs based on the ragas Sohni and Rageshwari for the 1960 film Mughal-e-Azam with music directed by Naushad. And he, of course, he was honored with many awards and recognition like Sangeet Natak Academy Award in 1962, Sangeet Natak Academy Fellowship and Padma Bhushan Award in 1962. And next personality we pay tribute to today is Pandit Mukhram Sharma, who was not just a writer but a visionary who shaped the narrative style of Indian films. He is known for his pioneering films like Vachan, Sadhana, Talaq, Dhool Ka Phool, Gharana, Grahasthi, Nokar and many more.
वर्ष 1942 में उन्हें राजा नीनी द्वारा निर्देशित फिल्म 10 बजे के गीत लिखने का मौका मिला जिसमें उर्मिला और परेश बनर्जी अदाकारी कर रहे थे। फिल्म 10 बजे एक सुपरहिट साबित हुई। इस प्रारंभिक सफलता के चलते मुखराम शर्मा को राजा हरिश्चंद्र और तारामती की प्रेम कहानी पर आधारित शोभना समर्थ और अभिनीत राजा नीनी की अगली फिल्म तारामती लिखने का अवसर मिला। ये फिल्म न सिर्फ एक बड़ी हिट साबित हुई बल्कि मुखराम जी द्वारा इसके तुरंत बाद लिखी गई उनकी अगली दो फिल्मों विष्णु भगवान और नल दमयंती को भी सफलता मिली। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म शादी के पहले से ये गीत।
आज दुल्हनिया के सवार केसरी बिंदिया काजर डारे।
And next personality, we know him as one of the Mishra brothers, Rajan and Sajan Mishra, who have been performing to audiences all over India and the world for many years. Rajan and Sajan Mishra are part of the 300-year-old lineage of Khayal singing of the Banaras Gharana. The brothers, singers of the Khayal style of Indian classical music, they were awarded the Padma Bhushan in 2007, Sangeet Natak Academy Award jointly in 1998, the Gandharv National Award and the National Tansen Samman. But unfortunately, we lost Rajan Mishra on this day during the COVID times. We have a rendition in his voice.
आज चंद्रबली पांडे की जयंती है। हिंदी भाषा और साहित्य के उन्नयन, संवर्धन और संरक्षण के लिए वे समर्पित थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहने के अतिरिक्त नागरी प्रचारणी सभा के भी सभापति रहे। इन्होंने अपना पूरा जीवन अध्ययन और हिंदी प्रचार में लगा दिया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूफी मत, उर्दू का रहस्य, राष्ट्रभाषा पर विचार आदि।
And a leading figure in contemporary Hindi film music, the recipient of several accolades, including 2 National Film Awards and 7 Filmfare Awards, who was conferred the Padma Shri by the Government of India in 2025, Arijit Singh has his birthday today. We from Akashvani Parivar wish him a very happy birthday.
सजनी रे कैसे कटे दिन रात कैसे मिले तेरा साथ तेरी याद सतावे रे।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और अनुजा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।
नमस्कार।